Group 1 बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है? जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए ना। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आईवेल में काम में आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म यह खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगा। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो ना, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं, वो आपका परिवार है ना, परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्मा है। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाला नहीं है, ये तो चलने वाला नहीं है। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। तो क्या कहा बाबा ने कि बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला है? खुशी का खजाना, ज्ञान गुण शक्तियां खुशी पवित्रता संतुष्टता दुआएं पुण्य कर्म, ये सब खजाने हैं। समय संकल्प, खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है? जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। लोग किनारे किस लिए रखते हैं कि आईवेल में काम में आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म यह खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुना है, प्राण चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो। तो बाबा ने अथाह खुशी का खजाना दिया, तो इस खजाने को बांटना है। जितना बांटेंगे वो बढ़ेगा, जितना बांटेंगे वो हमारे अंदर और ही गहरा होगा और उतना ही वो आगे चलेगा, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। संसार के लोग खुशी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? नाइट क्लब, क्या क्या करते हैं? संसार की आत्माओं की खुशी के साधन क्या है? घूमना फिरना खाना पीना सिनेमा लाफ्टर क्लब कॉमेडी शो बगीचे में जाते हैं घूमने बीच पर जाते हैं घूमने किसी को तंग करने से भी खुशी होती है किसी को तंग करने से किसी को डराने से किसी को धमकाने से भी खुशी मिलती है अलग प्रकार की वो जो होता है ना जंगल में ऐसा एक नहीं जंगल नहीं खेतों में लगा रहता है ना वो पुतला क्रेप गोट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुतला, वो खेतों में रहता है ना, मनुष्य, वो मराठी में स्क्रेक्रो, स्क्रे कुछ तो ऐसा है इंग्लिश, स्क्रो हिंदी में, हिंदी में नहीं पता क्या बोलते, पुतला। तो उससे पूछा गया, भाई तुम बोर नहीं होते हो क्या, खड़े 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 रहते हो ऐसे ही दिन भर, तो कभी तुमको बोर नहीं होता है? बोलते नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों को भगाता हूँ ना, पंछियों को, वो मेरे से डरते हैं, तो मैं उनको भयभीत रखता हूँ, तो इस वजह से ये भी मेरी खुशी है एक, तो वो भी खुशी है, दूसरों को डराना, दूसरों को भगाना तो संसार की कुछ आत्माओं को उसमें भी खुशी आती है।
विदेश में वो बैल ये करते हैं ना, उसका उसके सामने मनुष्य जाता है सिंह से
हाँ, वो भी है, संसार की आत्मा एक खुशी के लिए खर्च करती है, फिर भी खुशी नहीं मिल पाती है। खुशी इतनी सस्ती नहीं है कि जो पैसों से खरीदी जाए, पैसे फेंक दो और खुशी मिल जाए, पैसे फेंक दो और शांति मिल जाए, नहीं मिल सकती। संसार की आत्माओं की जो खुशी है वो उथली है, ऊपर ऊपर की, सुपरफिशियल, उसमें गहराई नहीं है। स्थाई कैसे रह सकती है? क्षणिक है, ऊपर ऊपर की है, दिखावा है, ऊपर से मुखौटा पहन रखा है बस खुशी का, अंदर से गहराई में दुख ही दुख समाया हुआ है, पर वो दुख बताना नहीं चाहते, इसके लिए खुशी है बस, तो वो खुशी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं। समय और धन, एक तो वस्तुओं में, साधनों में, या फिर व्यक्तियों में खुशी को ढूंढते हैं। खेल से भी खुशी मिलती है, वो तो भी थोड़ी अच्छी प्रकार की खुशी है चलो नहीं, खेल कूद जो है पर स्पोर्ट्स, वो भी एक, उससे भी खुशी मिलती है। खुशी का एक हार्मोन होता है ब्रेन में जिसे इंडोर्फिन कहा जाता है, जब वो इंडोर्फिन वहां से रिलीज होता है तब खुशी का अनुभव होता है। अब ये जो हार्मोन रिलीज होता है ये खाने पीने से भी होता है, चॉकलेट खाने से भी होता है, वस्तुओं के खाने से भी हार्मोन रिलीज होता है, एक सुख, संसार के जो सुख है उनसे भी रिलीज होता है, सुख सुविधाओं से रिलीज होता है, काम विकार से भी वो रिलीज होता है, ये सब चीजें हैं संसार की पर अल्पकाल की। वही मेडिटेशन से भी सबसे ज्यादा रूप में रिलीज होता है, और शरीरीपन से, प्रिंसिपल एक ही है सब जगह। तो हर एक की प्यास है खुशी की, परंतु मार्ग गलत है, समय व धन खर्च करते इसको पाने के लिए पर नहीं मिलता है, कितना समय देते परंतु नहीं मिल सकता, क्योंकि खुशी अंदर है बाहर नहीं, ढूंढ उसे बाहर रहे हैं, कितना भी बाहर ढूंढो वस्तु में या व्यक्ति में नहीं मिल सकती। कल हमारे आईसीयू में एक लड़का एडमिट हुआ, 16 साल का, आशिक जहर खा लिया उसने वो भी कहा उधर जंगल में कहीं जाकर दूर, हाँ किसको पता नहीं, फिर भी लेके आ गए उसको बच भी गया अभी ठीक है, 16 ही साल की उम्र है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है प्रेम के बारे में, क्या उसको समझ में आता है प्रेम क्या होता है, क्षणिक आकर्षण है जिसको वो प्रेम कहते हैं, कि किसी और के बिना जी नहीं सकता है, इतना प्रेम की क्या अंडरस्टैंडिंग होगी उसे। व्यक्तियों में खुशी, देह में खुशी, देह की जो सुख है इसका, इससे भी प्राप्त जो खुशी है, जो सुख है, वो क्षणिक है, वो तुरंत दुख में रूपांतरित हो जाता है, व्यक्ति उसी में ढूंढता है, देह में देह की सुख सुविधाओं में, वस्तुओं में, साधनों में, घूमने फिरने में, प्रकृति में, जो भी बाह्य संसार है उससे जो भी खुशी प्राप्त होती है वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। जो भी सुविधाएं मिल जाए, गर्मी है कूलर मिल जाए, फैन मिल जाए, एसी मिल जाए, आत्मा अगर उसकी खुशी इस पर निर्भर है तो उसे दुख भोगना पड़ेगा जब वो नहीं रहेगा। अभी भूकंप आ रहा है, आया है तो लोग बाहर सो रहे हैं घर से। अभी जिनको पहले से अभ्यास होगा सोने का, उन्हें कोई दुख नहीं होगा, पर जिनको एसी में सोने की आदत है उनके लिए बहुत मुश्किल है। सब कुछ होते हुए भी उनका उपयोग न करना या उनका उपयोग करते हुए भी उससे अनासक्त रहना, यह ऋषि का स्वभाव है। कुछ है ही नहीं तो वो त्याग नहीं है। कोई भिखारी कहता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो कहता है मेरा आज उपवास है, उसको क्या कहेंगे? वो उपवास है क्या? उपवास तो तब है जब सारे सामग्री पड़ी हुई, अंबार लगे हुए हैं खान पान के, 56 प्रकार के भोग सामने हैं, फिर भी हमारी कोई आसक्ति नहीं है उसमें।
भोग भी हो,
कुछ भी हो, हमें भोग भी है उसमें, फिर संयम से स्वयं को, वो है उपवास। वो महात्मा बुद्ध कह सकता है मैंने सारे विश्व का त्याग कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक भिखारी कह दे कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, कौन मानेगा? जिसके पास है ही नहीं कुछ। तो सब कुछ होते हुए भी ऐसे कि जैसे कुछ है नहीं, ये अवस्था है योगी की। सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ आ गए, सारे रिश्ते संबंधी मित्र सब कुछ छोड़ दिया, पर इस देह का क्या? देह तो है, इसका क्या? इसमें तो बंधे हुए हैं, इसकी आसक्तियों में, इसकी वासनाओं में, इसकी इच्छाओं में, इसकी प्राप्तियों में, इसके सुखों में, इसकी सुख सुविधाओं में। बहुत अच्छा लगता है इसको पालना, यही सबसे बड़ी गृहस्थी है। ये देह की गृहस्थी से कहाँ छूटे? देह में तो लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव। संसार को छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया, कोई आसक्ति नहीं, कहीं जाने की आसक्ति नहीं, परंतु देह का क्या? ये देह में आत्मा बंधी है, इस बंधन से उसको इसमें रहते रहते ही छुड़ाना है। देह आत्मा से निकल जाए तब उसका अनुभव नहीं होगा। देह में रहते ही मुक्ति का अनुभव, देह में रहते ही जीवन मुक्ति का अनुभव, वो भी ऐसा ही कुछ है शरीर छूटता नहीं है, उसमें शरीर रहता है, परंतु वो शरीर के भान से इतने परे हो रह जाए कि शरीर में कुछ भी हो जाए उन्हें उसका अनुभूति नहीं होती, इतने उससे डिटैच हो जाते। दो प्रकार की है वो भी, सविकल्प एक निर्विकल्प। सविकल्प में फिर भी आना जाना चालू रहता है, जब चाहे तब उसमें चले जाते, एक भाव समाधि जिसको कहते हैं, जिसमें विचार रहते। एक दूसरी समाधि है वो है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प में सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो ये रहता ही नहीं, उसमें फिर शरीर को संभालना होता है। अगर वो शिष्य शरीर को न संभाले तो मृत्यु हो जाएगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाया है कि वो 6 मास तक उस अवस्था में थे, तो उसके जो भक्त लोग थे उन्होंने उस शरीर को संभाला, उसको खिलाया पिलाया, उसको भान नहीं था शरीर का। वैसे ही टाइप की एक अवस्था है, कोमा टाइप। तो वो है निर्विकल्प समाधि, सर्वोच्च अध्यात्म की। संसार में जो संन्यास मार्ग है वेदांत, तो उसकी सर्वोच्च अवस्था है निर्विकल्प समाधि। तो संसार में जो भी सुख है, सम टोटल ऑफ ऑल जितने भी है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर हमारी संतुष्टता उस पर निर्भर है तो वो असंतुष्टता में परिवर्तित हो जाएगी, दुख में परिवर्तित हो जाएगी। टच बॉर्न हैप्पीनेस है, गीता में लिखा है टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है, स्पर्श, वो अंत में दुख में परिणित होता है। उसकी निष्पत्ति दुख है, अंततः दुख ही प्राप्त होगा जो भी स्पर्श से उत्पन्न होता है। जो भी टच से जो भी उत्पन्न होगा वो दुख मिलेगा उससे, क्योंकि आत्मा को, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है इस बाहर बाह्य जगत की, उसकी अनुभूति के लिए। पर हम एक्चुअली उसी तक पहुंचने के लिए इसका आधार ले रहे हैं। हमको लग रहा है वो सुख यहाँ खोया हुआ है, जैसे अशरीरीपन सर्वोच्च अवस्था है वो खोई हुई है, आनंद खोया हुआ, उसी को काम विकार में ढूंढ रही है आत्मा। पर उसकी एक्चुअल खोज वो करते हुए भी आनंद की ही है, परंतु मार्ग गलत है बस, और वो समझते समझते कई जन्म गुजर गए, पता नहीं चला कहाँ है। तो संसार के लोग क्या कुछ नहीं करते, धन व समय खर्च करते फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी का मार्ग अध्यात्म है केवल बस। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है, और जिन्हें ये प्राप्त हो गई है अभी उन्हें दूसरों को देनी है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी, एक झलक भी उसे दे दो, थोड़ी सी भी दे दो, क्योंकि उसे पता ही नहीं खुशी क्या रहती है, वो तो उसी को खुशी समझ रहा है, जैसे वो मेंढक की तरह। एक मेंढक है जो कि कुपमंडूक, वो छोटे से तालाब में रहता है और कहता है यही समुद्र है, समंदर है ये, बस इससे बड़ा और कुछ नहीं है। एक दिन एक समुद्र का मेंढक उस तालाब में आता है और वो उसको कहता है कि भाई ये समंदर है, तो बोलता है ये समंदर थोड़ी ना है, समंदर उधर है, तुमको पता ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं कभी, मैं तुमको दिखाता हूँ। वो बोलता है, झगड़ा करता है, नहीं यही है, क्योंकि उसका जन्म ही वहां ही हुआ है, उसके लिए वही सागर है। पर जब वो दूसरा मेंढक उसे ले जाता है उस सागर की तरफ, तब उसे पता चलता है सागर तो वो है। संसार की आत्मा इंद्रिय सुखों को ही सब कुछ समझती है, इंद्रिय सुख ही सब आकर्ष, इंद्रियों का आकर्षण ही सभी दुखों का जड़ है, ऐसे लिखा है ना कहीं जगह। तो ये जो इंद्रिय सुख है, इसमें जो सुख मिल रहा है आत्माएं समझ रही बस यही सुख है, उसने वो दिव्य सुख जो परमात्मा द्वारा अनुभव होता है उसकी टेस्ट ही नहीं ली है। वो उसको कोई टेस्ट करा देना तो वो फीका पड़ जाएगा। बचपन से नमक खा रहे और कहते हैं कि ये शक्कर है, उसको शक्कर किसी ने बताया नहीं बचपन से कैसी रहती, वो कहता है यही शक्कर है। उसको टेस्ट, उसको कितना भी समझाओ कि ये शक्कर नहीं है, शक्कर बहुत मीठी होती है, वो बोलती यही मीठा है, उसको टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके मुंह में थोड़ी डालनी पड़ेगी। वो एक बार टेस्ट करा दिया तो फिर उसको लगेगा कि ये मैं क्या है। इस संसार के सुख फीके पड़ जाएंगे जब इसकी अनुभूति हो जाएगी, पर इसकी अनुभूति में ही मेहनत है, कितना जल्दी नहीं मिलता है, जो कहीं हम कितने सालों से लगे हुए फिर भी वो संसार के सुख बीच बीच में आकर्षण करते हैं। तो संसार की आत्माओं की क्या गति है फिर, जो उसमें डूबे हुए है। मेहनत का काम है, तो अगर मेहनत ये अभी अगर हम अनुभूति करा दे आत्माओं को, अनुभूति कराना है तो कितनी दिल से दुआएं निकलेगी। आप दाता के बच्चे हो तो फराक दिली से बांटो, बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो, समय को देख रहे हो ना, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे है वो आपका परिवार है ना, भावनाओं को ऊंचा उठाना, ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है, परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुणों को इमर्ज करो, आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कुछ भी कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो चलने वाले नहीं है, ये सुनने वाले भी नहीं है, ये चलने वाले भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचो। हमारा पहला इम्प्रेशन ये रहता है ना, क्योंकि हमने ज्ञान बहुत सुना है, हम किसी को सुना रहे उसको पसंद नहीं आ रहा है तो हम क्या सोचते हैं, हमारे कुल की नहीं है, छोड़ो इसको, ज्यादा पीछे इसकी लगू मत, इसकी ज्यादा सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो गोपाल भाई जी है ना इधर बाल भवन वाले, वो जब पहले पहले सेंटर में उसके घर में गीता पाठशाला खोल दी, वो तो मंदिर भी नहीं जाते थे, तो वो आए तो सारा फाड़ दिया चित्र वित्र जितने सृष्टि चक्र का वो सब। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ, गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन अपनी शुभ भावना उसको फल दे देती है। लोगों में ज्ञान और योग के प्रति शुभ भावनाएं नहीं है, बहुत कुछ सुन रखा है उन्होंने पहले से ही। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसा नहीं होता, कोई सीजन का फल है, कोई सदा का फल है। जो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा। तो अपने शुभ भावना का बीज डाला, आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा ही। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं, तो जो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है, तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद ये निकलेगी, इसलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते जाओ, समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। ये ज्ञान का बीज अविनाशी है, एक बार डाल दिया उसको 10 साल के बाद कभी ना कभी तो याद आएगा ही कि ये ज्ञान हमने सुना था कभी तो, बहुत साल पहले। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। विरोध करता है करने दो, और ये सोचो कि अपोजिशन या इंसल्ट या गालियां क्या करेगी, खाद का काम करेगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे बाद में। इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते चलो, अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गया। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ, इतने भरपूर हो ना, सब खजाने हैं। किसके द्वारा देने के लिए कहा है, वृत्ति वाइब्रेशन, मनसा वाचा कर्मणा, उसमें भी वृत्ति और वाइब्रेशन द्वारा देना है आत्मा को। वाइब्रेशन वृत्ति कैसी हो, शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना, दातापन की भावना, ये भावना की हमें सबको देना है बस। जो भी आए कुछ ना कुछ ले जाए, जरूरी है कि हम उसे पकड़ के ज्ञान ही सुनाए, आवश्यकता नहीं है। हर एक को ज्ञान नहीं सुनाने की, किसी को केवल वृत्ति और वाइब्रेशंस और भावनाओं द्वारा भी हम दे सकते हैं। केवल हम किसी को आत्मा देखे और उन्हें पवित्रता की सकाश दे दे, ये भी देना ही है। केवल उन्हें ये समझे कि ये देव कुल की आत्मा है। जो लोग यहाँ आते हैं पर्यटक, अज्ञानी है, परंतु हम उसे देखे तो खाली इतना ही समझे कि ये देव कुल की आत्मा आ गई है, बस। रॉयल कुल की महान आत्मा है, वापस बरसाने लेने के लिए पहुंच गई है। आए, सुने, न भी सुने और चले जाए, पर हमारा ये संकल्प उन तक बीज डाल दिया हमने, वो बीज निकलेगा, कभी ना कभी निकलेगा, कभी ना कभी उनको परिचय होगा, कभी ना कभी कुछ ऐसा जीवन में होगा कि अध्यात्म की ओर रुचि होगी और बराबर पहुंच जाएंगे। तो हम बीज डालते जाए, जैसे कि एक बार कहा था ना, अमृत के लिए जैसे एक लकीर खींच लो वहां पर, कहा तोलना का हाँ, अमृत वेले का ऐसी एक लकीर खींच दो कि आज इस लकीर के अंदर जो भी आएगा, एक पवित्रता की पावरफुल लकीर, जो भी आएगा उसे परमात्मा प्यार की टचिंग होगी। जो भी आएगा उनके हृदय में परमात्मा प्रेम भर दो, कोई भी हो, चाहे वो आदिवासियों का मेला ही क्यों ना हो, वो उन आदिवासियों के दिल में भी परमात्मा प्यार उत्पन्न हो जाए, क्योंकि बाप की संतान है कि नहीं, कि नहीं है, सब है, ध्यान में भी चलते तो उनके हृदय में भी परमात्मा प्रेम उत्पन्न हो जाए। जो संसार की गिरी हुई नीच अधम से अधम वेश्याए जा, जो भी है, उनके हृदय में भी ईश्वरीय प्रेम उत्पन्न हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। हरेक को परमात्मा प्रेम की सकाश दे दो। आत्माओं को इमर्ज करो जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानती, और उनको इमर्ज करके ईश्वरीय प्रेम उनके हृदय में स्थापित करो, क्योंकि उनमें भी ये इच्छा तो है ही, हमें क्या पता उनके हृदय में क्या चल रहा है। एक साहूकार था, साहूकार नहीं, एक बहुत बड़ा भक्त था, और उसी के घर के दो दूर एक वेश्यालय था। तो वेश्या की भी मृत्यु हुई और इस भक्त की भी मृत्यु हुई। यमराज लेने आए, भक्त को लेने लेके चले नरक, और वेश्या को लेके चले स्वर्ग, तो वो पूछता है ये क्या अन्याय मेरे साथ। तो उसने कहा ये तुम भक्ति तो करते थे पर तुम्हारा ध्यान हमेशा वेश्यालय में रहता था, क्या चल रहा है उधर। तुम आरती तो यहाँ लगाते थे, सुगंध तुम्हारी धूप तो यहाँ जलती थी, पूजा तो आरती मन सब कुछ यहाँ अपने कमरे में करते थे, पर ध्यान हमेशा उधर रहता था कि क्या वहां पर क्या गीत चल रहा है, क्या संगीत चल रहा है। हाँ, तन से यहाँ था पर मन से वहां था। और वो वेश्य भले वहां थी परंतु निरंतर उसका ध्यान उस भक्त की ओर लगा रहता था। भक्त मतलब सोचता था कि देखो कितने भाग्यवान है ये, भगवान के भजन करता है। संध्या आरती होती थी तो सारा ध्यान उसका वहां, शरीर वहां रहता था पर ध्यान पूरा के पूरा वहां चला जाता था। सोचती थी कितना भाग्यशाली, मैं भी किसी जन्म में इस तरह भक्ति करूंगी और भगवान को प्राप्त करूंगी, कितना आनंद है ऐसे पवित्र जीवन में। उसका सारा ध्यान उधर। ऐसी कहानी बताते हैं, मतलब हर आत्मा में परमात्मा प्रेम तो है ही, तो वो जगाना है। फिर आगे डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं, क्योंकि डबल पुरुषार्थ करके एक तो अपना रीति रसम परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजोरिटी में अच्छा है, अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी नहीं। ये तो सहज है ना, बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है। अशरीरी होने में, बीज रूप स्थिति में ज्वालामुखी योग करने में मेहनत है, परंतु स्नेह में समा जाओ, प्यार में खो जाओ। वो कैसे खोएंगे, उसके उपकारों को याद करके। परसों मुरली में था ना, बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। उपकारों को याद करेंगे तो सतही होगा, वो सतही योग हो जाएगा। उसने क्या क्या किया, अगर वो न मिलता तो हम कहाँ होते, अगर उसने हमें नहीं चुना हो तो आज हम कहाँ होते, ये सोचना बस। उसने हमें क्या क्या दिया है, प्राप्तियों की लिस्ट, भाग्य की लिस्ट, अगर हम मधुबन न आते तो कहाँ होते, अगर उसने हमें अपनाया ही नहीं होता तो हम कहाँ होते। कल के मूल्य में था ना, बाप आया भी नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, महिमा तुम्हारी नहीं है, महिमा बाप की नहीं है, महिमा ब्रह्मा की नहीं है, महिमा ब्राह्मणों की भी नहीं है। बाप आते ही नहीं तो तुम्हारा क्या होता, आज के कल के मूल्य में वाक्य था एक, अगर वो आता ही नहीं तो हमारा क्या होता। दादा भी क्या करता, कौन क्या करता, कोई नहीं। तो ये चिंतन करते करते ही खो जाना, बाबा ने कहा ना मनन करते करते ही मगन हो जाओ, ये मगन अवस्था ही योग की अवस्था है, इसमें मेहनत नहीं है, माया आएगी ही नहीं। बाबा ने कहा है तो विधि सुनाई ना समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ। तो ये सहज है ना, बीज होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है, और कुछ भी नहीं आए लेकिन स्नेह में समाना तो आता है ना, कि ये मुश्किल है। किसी ने कहा नहीं तो ये करो, अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज भी छोटी लगेगी। फरिश्ते हो ना या साधारण मानव हो, क्या प्रश्न पूछा, फरिश्ते हो या साधारण मानव हो। किसी ने कहा फरिश्ता, फरिश्ता कहाँ रहता है, फिर ऊपर रहता है या नीचे। किसी ने कहा ऊपर, तो नीचे क्यों ठहरते हो, अच्छा लगता है मिट्टी से खेलना, मिट्टी को गले लगाना, मिट्टी से खेलना, मिट्टी में हाथ मैले करना, मिट्टी में ही रमन करना, मिट्टी में ही सोना, मिट्टी में ही उठना, दिन रात मिट्टी 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 की सुगंध, बस वही जीवन है। कभी कभी दिल होती है नीचे आने की, नहीं, फिर क्यों आते हो, क्या उत्तर है इसका ब्राह्मणों के पास। ओ युक्ति युक्त। हर समय सेवा के लिए, आर यू श्योर। बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का डबल फल, डबल चांस है, इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे, डबल सर्विस, महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियां दो। मांगना नहीं है, बाबा को बच्चे के मांगने का स्वरूप पसंद नहीं है, देते जाओ, कुछ भी नहीं मांगो उससे। जो रहम को मांगता है, जिसे आवश्यकता है, वो कभी रहम दिल नहीं बन सकते।
एक बार बाबा ने कहा आओ बाबा को मदद करो।
हाँ, वो तो ठीक है, वो मुल्ली चली थी। अच्छा है। हिम्मत रखने में नंबर ले लिया, अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। तो ये था पहला ग्रुप जिसमें बाबा कहते हैं कि हमारे पास अथाह खुशी का खजाना है, संसार में सच्ची खुशी नहीं है, हमें खुशी बांटनी है, फ्राक दिल बनना है। तीन बातें हमेशा बाबा जोड़ते, संपन्न, रहम दिल और दाता। जो संपन्न है और दाता है वही दे सकता है। दाता बनना है, संपन्न बनना है, रहम दिल बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी है, अशांत है, तड़प रही है, इसके लिए उन्हें देना है। थोड़ी सी भी एक बूंद भी मिल जाए तो बहुत बड़ा समझेंगे। दूसरी बात यहाँ भी जो कही है वो, चाहे कोई ज्ञान योग में कोई शुभ भावना उनकी नहीं है हमारे ज्ञान योग में, फिर भी उनको देते जो, क्योंकि बीज डालना है। ये गालियां, ये इंसल्ट, ये सब खाद का काम करेगी। अपोजिशन, अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां, विरोध, अपमान और गालियां, ये सब खाद का काम करेगी, तो और ही फल अच्छा निकलेगा। और विदेशियों से यहाँ बाबा ने कहा कि अगर बीज रूप स्थिति कठिन लगती है तो स्नेह की गोदी में छिप जाओ, स्नेह में समा जाओ, उसके उपकारों को याद करो, एहसानों को याद करो, उसने क्या क्या किया हमारे लिए वो सब याद करो, तो स्वतः ही वो भी योग है। और लास्ट में डबल पुरुषार्थ, डबल फर, डबल चांस, डबल फायदा, डबल सर्विस। ओम शांति।